حسین یا حسین یا حسین یا حسین،
یہ عزائے حسین در سے گائے حسین،
یہ عزائے حسین در سے گائے
باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد والہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين أوتوا العلم من قبله وإذا يتلى عليهم، صلوات دیجیے محمد علی محمد پر، آپ سے درخواست کریں گے اپنے تمام مرحومین اور تمام شہداء کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات عنایت فرما دیجیے محمد علی محمد. اس سے بہتر انداز میں بلند آواز سے ایک صلوات بھیج دیجیے، معذرت میرے اختیار میں نہیں تھا، ٹریفک میں بہت برا پھنسا تھا اور اس کی وجہ سے تھوڑا سا آپ کو انتظار کرنا پڑا، تاخیر ہو، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، لیکن انشاءاللہ کوشش ہوگی، زندگی رہی تو کل اپنے وقت پہ ہی بیٹھیں گے، بعض چیزیں اختیار میں نہیں ہوتی انسان کے. بہرحال آج آپ سے بات کریں، میں ہمارے کچھ احباب نے بارہا مجھ سے کہا کہ تھوڑا سا جب علماء کا ذکر ہو رہا ہے تو تھوڑا سا ذکر کر دیں شہباز قلندر کا. اب آدمی جو سوچے گا وہ سنے گا بھائی شہباز قلندر کہاں اور علماء کہاں، ہے نا، یہی آج بتانا ہے کہ علماء کے ساتھ ہم سلوک کیا کرتے ہیں معاشرے میں، یہی تو بتانا ہے کہ شہباز قلندر کتنا بڑا عالم ہے. معذرت چاہتا ہوں، میں نے کئی تقاریر سنی ان کے محفلوں کے موقع پر، مجلس کے موقع پر بھی، میری حسرت ہی رہی کہ کوئی شہباز قلندر کی صحیح شخصیت سامنے بیان کر دیتا، بلکہ بعض جگہ تو مجھے بہت ہی دکھ ہوا کہ پڑھنے والے کو بھی نہیں معلوم شہباز قلندر کون تھے، چند باتیں اس کو معلوم ہے بس. تو میں نے موقع غنیمت جانا، پرسوں بھی مجھ سے بہت اصرار کیا گیا کہ پڑھتے، میں نے کہا ہوگا تو پھر انشاءاللہ، تو آج کچھ شروع کے 7-8 منٹ 10 منٹ اگر ہو جائے کوئی بات نہیں دے دیں، تاکہ میں آپ کو بتا سکوں کہ شہباز قلندر ہے کون، کیا ہیں، کہاں سے آئے، کہاں گئے، اصل مقصد کیا تھا، یہاں آنے کا آئے کیوں تھے، کس لیے آئے تھے. ہزاروں لاکھوں کا جو مجمع وہاں جاتا ہے نا، بہت معذرت کے ساتھ پھر معذرت بار بار مجھے کرنا پڑ رہی ہے، کیونکہ وہی والی بات ہے کہ ذرا ذرا سی بات میں بڑے نازک مزاج لوگ ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں. اچھا، دوسروں کو چاہیے کچھ بھی کہتے رہیں، انہیں کچھ نہ کہا جائے. تو میں کسی کو کچھ نہیں کہہ رہا، صرف اتنا عرض کر رہا ہوں کہ اس لاکھوں کے مجمع میں بھی پوچھیں گے، پوچھنے کی کوشش کرتے تو کسی کو کچھ نہیں معلوم، اور جو معلوم ہے وہ بہرحال جو بھی معلوم ہے میں کیا عرض کروں آپ کو. یہ یاد رکھیے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، یہ جو بیٹے تھے اسماعیل، جن کا انتقال آپ کے سامنے ہو گیا تھا، یاد رکھیے اسماعیلی فرقہ انہیں کی طرف منسوب ہے نا، تو انہیں نے فرقہ نہیں بنایا، نہ انہیں بغاوت کی نہ نکل کے گئے، وہ تو بعد میں ان کا بیٹا جو تھا محمد ابن اسماعیل اس سے پھر وہ منسوب ہوا سارے سلسلے. جناب اسماعیل نے کچھ نہیں کیا، جناب اسماعیل کا تو انتقال امام کے سامنے ہوا نا، تو ایک ان کے وہی بیٹے محمد ابن اسماعیل جن سے وہ اسماعیلی فرقہ نکلا یا بنا یا جس نے بھی بنایا، بہرحال وہ ایک الگ تاریخ ہے، یہاں پڑھ چکے ہیں 15-16 سال پہلے اس پہ ایک اشرہ فاطمین مصر پہ. تو یہ جو تھے، دوسرے بیٹے کا نام تھا منصور، یعنی معصوم کے پوتے، یعنی ان کے بیٹے اسماعیل، اسماعیل کے ایک بیٹے تو محمد، دوسرے بیٹے کیا تھے منصور. یہ منصور ابن اسماعیل ابن امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، صلوات دیجیے محمد علی محمد پر. ان کی نسل میں، ان کی نسل میں آٹھویں یا نویں پشت میں آتے ہیں جناب ابراہیم، سید ابراہیم کبیر، ان مروند کے ہیں. ابھی مروند بتا دیں گے کہاں ہے. تو یہ مروند کے ہیں اور ان کے صاحبزادے ہیں یہ جناب سید عثمان علی ابن سید ابراہیم کبیر. اچھا ایک اور مسئلہ یہاں پہ چھیڑ دیں، ایک ابراہیم مجاب کا مزار ہے، قبر ہے کہاں؟ روضہ جناب سید الشہداء میں. اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ شاہ عباس قلندر کے والد ہیں. میں نے بڑی ابھی تک مجھے کوئی ایسا ثبوت نہیں ملا، کیونکہ ان کے والد کا نام ہے ابراہیم کبیر مروندی، ابراہیم کبیر، اور یہ ہیں ابراہیم مجاب، ہے نا. لیکن بہرحال ممکن ہے ہوں، لیکن ابھی تک کوئی ایسی سند ہاتھ نہیں آئی. میں نے روانہ تو کی ہیں کچھ خطوط، کچھ پیغامات اپنے احباب کو، دوستوں کو، مشہد کے کتاب خانے میں بھی، نجف میں بھی، کربلا میں بھی بھیجا ہے کہ بھائی ذرا طریقے سے نکال کے بتائیں، اگر ہوئے تو ٹھیک ہے، نہیں ہوئے تو وہ بھی جب تحقیق آئے گی تو آپ کو سامنے پیش بھی کر دیں گے اور بتا بھی دیں گے. ہیں تو بھی تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں کیا مسئلہ ہے، لیکن معلوم تو ہونا چاہیے نا کہ ہیں یا نہیں ہیں، ہے نا. یہ تو معلوم ہونا چاہیے نا کہ ہیں یا نہیں. معلوم ہے اگر ہیں تو وہ کتنے اور نور اللہ نور، ہمیں کیا مسئلہ، ہمیں کوئی پریشانی تھوڑی. لیکن ان کے والد کا جو لقب ہے وہ مجاب ملا ہی نہیں، وہ ملا جہاں بھی میں نے دیکھا، کیونکہ یہاں بھی آپ جانتے ہیں سندھ میں اتنی تحقیق، اتنی کتابیں. ابھی تازہ ترین جو آئی ہے منور علی محیصر کی 800 صفحات کی کتاب ہے میر اقسم فیض قلندر، کتاب کا نام ہے میر اقسم فیض قلندر، 800 صفحات، اور وہ اتنی معتبر کتاب ہے کہ جناب اس کو محکمہ سندھ جو اوقاف ہے، محکمہ سندھ جو ہے، محکمہ اوقاف ہے سندھ جو ہے، اس نے خود چھپوایا اس کتاب کو، اور بڑا قیمتی چھپایا. پھر اس میں سارے حوالے علامہ ٹھٹوی نے جو لکھی ہے، علامہ غلام مصطفیٰ قاسمی نے جو لکھی ہے، پھر وہ ساگر صاحب ہیں بہت بڑے ایک محقق، انہیں نے لکھی ہے، پھر مولائی شیدائی یا مولائی شیدائی ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، وہ بھی اس میں حوالے ہیں بہت. پھر وہ رچرڈ برٹن، یہ نہیں رچرڈ برٹن آج کا، 150 سال پرانی بات کر رہا ہوں، 1852 میں اس نے کتاب لکھی تھی ہسٹری آف سندھ. تو ہسٹری آف سندھ میں بھی سارا سیون کا بڑا تفصیل سے اس نے ذکر کیا، شاہ عباس قلندر کا بھی ذکر کیا. تو کہیں بھی مجھے ان کے والد کا نام ابراہیم مجاب نہیں ملا، ابراہیم کبیر ملا. بہرحال اگر ہیں، میں نے عرض کر دیا، ممکن ہے وہ لقب بھی اگر ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں کیا پرابلم ہے، ہم اس کو قبول کریں گے اور لوگوں کو بتائیں گے بھی. لیکن ابھی یہ حالت تحقیق میں ہے یہ بات کہ وہی ہے ابراہیم مجاب اور ابراہیم کبیر ایک ہی شخص ہے یا یہ دو الگ الگ. اب آئیے مروند بھی دو ہیں، ایک ہے ہرات کے پاس، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہرات والا مروند جو ہے وہاں کا ہے، اور ایک مروند ہے تبریز کے پاس یعنی آذربائیجان، تو آذربائیجان میں تبریز. اچھا آذربائیجان اب تین حصوں میں ہے، ایک آذربائیجان تو پورا ملک ہے نا مستقل، کیونکہ ٹوٹ گیا تھا نا ماضی میں، ٹوٹ گیا تھا آذربائیجان، ایک مستقل ملک ہو گیا جو آج بھی ہے جس کا دارالخلافہ ہے باکو، اور ایک آذربائیجان ہے ایران میں. تو جو ایران میں آذربائیجان ہے وہ پھر دو صوبے ہیں، آذربائیجان شرقی، آذربائیجان غربی. آذربائیجان شرقی کا کیپٹل ہے ارومیہ، اور آذربائیجان غربی کا کیپٹل ہے تبریز. تو یہ تین حصوں میں تقسیم ہو گیا. تبریز کے پاس جو شہر ہے اس کا نام ہے مروند، آذربائیجان کا شہر ہے تبریز، اور تبریز کا میں نے بتا دیا کہ یہ خود کیپٹل ہے آذربائیجان غربی، اور آذربائیجان شرقی کا ہے ارومیہ، اور جو آذربائیجان الگ ایک ملک بن گیا وہ ہے، اس کا کیپٹل کیا ہے؟ باکو. ٹھیک ہے نا، یہ معلومات اس لیے دے رہے کہ چلو کچھ نہ کچھ تو ذہن میں رہ جائے گا نا. یہ دے کیوں نہ، اس لیے کہ تبریز یہ مروند شہر، یہ جو آذربائیجان ہے، تین ہستیوں کی وجہ سے مشہور ہے، یہ اس لیے بتا رہا ہوں. آذربائیجان کی خاصیت، جو خاص خصوصیات ہیں، ان میں تین شہر اور تین شخصیت ہیں. ایک تبریز، ایک شہر ہے تبریز، ایک ہے مروند، ایک ہے اردبیل. ہے تو بہت سارے شہر، وجہ شہرت آذربائیجان کی بتا رہے کہ آذربائیجان تین ہستیوں کی وجہ سے ہی بہت مشہور ہوا، اور تین شہر اس کے بہت مشہور ہیں. تبریز کس کی وجہ سے؟ حضرت شمس الدین ہے تبریزی. ٹھیک ہے، حضرت شاہ شمس الدین ہے تبریزی، اس لیے وہ آذربائیجان والے فخر کرتے ہیں، وہ اس کی وجہ سے. اردبیل میں آغا صفی اردبیلی، کون ہے آغا صفی؟ بہت بڑا مزار ان کا، مرجع خلائق ہے یہ صفی وہ ہیں جن سے خاندان سلاطین صفوی چلا. یہ صفی خاندان جن کا میں نے دیکھا تہمہ صفے صفی، اور بہت سارے صفی خاندان جو گزرے. ایک صلوات دیجیے محمد علی محمد، سامنے آئیے. نہیں ذرا जरा बेहतर अंदाज में सलवात भेजिए, मैं कुछ बताने जा रहा हूँ आपको, ठीक है। ये जो सफ़ी ख़ानदान है सारा, ये है उस आगा सफ़ी की औलाद, जो आगा सफ़ी बहुत बड़े वलीउल्लाह और बुज़ुर्ग गुजरे हैं, उनका मज़ार वहाँ पे तो अर्दबेल में। और मरवंद किसकी वजह से मशहूर है? सैयद उस्मान अली मरवंदी, जिनको शाहबाज कलंदर कहते हैं, समझ में आया? इसलिए इसको ज़्यादा लोग कहते हैं कि क्योंकि मशहूर वजह शोहरत ही है उसकी, तो वे उसी मरवंद के होंगे। एक मरवंद हरात में है बेशक है, लेकिन फिर उनका पूरा शजरा वहाँ का है ना, यहाँ का तो नहीं है। शाहबाज कलंदर का शजरा यहाँ का ही ना, ख़ानदान यहाँ का, तो उनका ख़ानदान ही वहाँ का है, तो वहाँ का है। तो ज़्यादा मोतबर ये है कि मरवंद वही वाला मरवंद है जो तबरेज़ के पास है। सलावात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अब आइए, अब ये लाल अलिफ़ के साथ है या ऐन के साथ है ना? कभी अलिफ़ के साथ नहीं कहा जाता है लाल शाहबाज कलंदर, तो उसकी भी वजह है। वो कहते भाई लाल लाल क्यों कहा? इसलिए कि ये लाल लिबास पहनते थे, चेहरा भी लाल था, आंखें भी लाल थीं, और कलंदरियों का लिबास भी लाल ही बन गया। आज भी जो कलंदरी हैं वो क्या पहनते हैं? लाल। तो लाल शाहबाज लाल क्यों है? असल में ये लाल है नाम, ठीक है ना? मफहूम मैंने बता दिया कि माना दोनों का ठीक है, लाल कह दें या वो कह दें, माना है, लेकिन असल में इनका लकब था लाल शाहबाज, लाल जवाहर है ना, वो लाल जवाहर से क्यों था, उसकी वजह है तारीख में। बचपन में खेल रहे थे पत्थरों के साथ, तो एक बहुत बड़े बुजुर्ग का वहाँ से गुजर हुआ, उन्होंने इनको देखा, ये तारीख में वाकई है, मेरे पास किताब है, तो उसने देख के इनको कहा कि देखो लाल लाल से खेल रहा है, एक हीरा हीरो से खेल रहा है। सलावात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। हीरा हीरा हीरो से खेल रहा। देखिए अभी मैं बताने जा रहा हूँ आपको, जो असल बात है वो अब बताने जा रहा हूँ, जो लोगों को नहीं मालूम, जिसमें अफसोस होता है, दिल दुखता है कि मानते हैं सब करते हैं, वही वाली बात है कि मानते हैं पहचानते नहीं, यही हमेशा का अलमिया है। अली की मान, अली को मानो, अली की ना मानो, अली को मानो, अली की, मेरा जुमला नहीं है भाई, ये डॉक्टर कल्बे सादिक साहब अल्लाह मकामहु का जुमला है, जो पूरी दुनिया में बड़ा मशहूर हुआ, अब भी मशहूर है हर जगह, पहली बार ही उनकी ज़बान से निकला था कि हमारी हालत यह है कि अली को मानो, अली की ना मानो। तो बस जितने बड़े लोग हैं उनके साथ ऐसी कोई पहचानते नहीं लोग। अब शाहबाज कलंदर को क्या समझा हुआ है, जो तस्वर में एक शख्सियत आती है, आप खुद ले आइए कि क्या होता है वहाँ पर। खैर, परवरदिगार सबको हिदायत दे, और इंशाअल्लाह बेहतर हो जाएगा जब लोगों को मालूमात हासिल हो जाएंगे कि क्या थे। तो शेख जमाल इनके मुर्शिद हैं, पीर मुर्शिद इनके उस्ताद, इस उस्ताद ने इनको हुक्म दिया था, हालांकि आए थे पहले मुल्तान, मुल्तान। अच्छा, एक और भी बात बता दें कि इनकी उम्र जो लिखी है ना, वो 112 साल लिखी है, हो या ना हो। देखिए वफात का सन तो बिल्कुल तय है, हिजरी 650 सातवीं हिजरी, ठीक है ना, हिजरी 650 में इंतकाल हुआ। विलादत में इख्तिलाफ, तो एक जगह जो तारीख विलादत वो अशार से निकालते हैं, उसमें उन्होंने निकाली है 538, तो 538 के हिसाब से कितना हो गया, 112 साल। तो कहीं आया है इसलिए बता रहा हूँ कि आया है, तो ये भी मौजूद है। तो पढ़े हो कह के ये नहीं बताया आपने, मैंने बता दिया आपको कि 112 साल भी है, लेकिन बहरहाल मुमकिन है कि तारीख विलादत किसी ने गलत लिख दी हो, जो भी हो, बहरहाल जैसा भी है, क्योंकि ये यहाँ पे जो इनके रहने की मुद्दत है ना सेवन में, ज़्यादा से ज़्यादा है 6 साल, वरना 2 साल और 1 साल भी है, अगरचे कि अक्सर लोगों ने 1 साल पर ज़्यादा इन्हिसार किया है। तो यहाँ से तारीख विलादत में मुझे थोड़ा सा शुबा नज़र आता है कि ये तो हो नहीं सकता कि 112 साल की उम्र, 111 साल की उम्र में ये सेवन आए, या 106, चलो 6 साल भी मान लो, तो ये तो नहीं हो सकता कि 106 साल की उम्र में ये सेवन। तो ये होती है तहकीक वाली बात है ना, तो इसलिए इन सब सवालात को रखना पड़ता है। खैर, तो ये आए थे मुल्तान, शेख जमाल इनके पीर मुर्शिद, जिनके हाथ पर इन्हें बैत की। और एक चीज़ आपको मुझे आज दिखानी भी है, बहुत अच्छी चीज़ आपके लिए लाया हूँ, एक सलवात दीजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। चलिए उसको हम पहले से निकाल के रख लेते हैं, ताकि फिर बाद में हमें मुश्किल ना हो, सिर्फ निकाल लें अपने हाथ में। एक बार और सलवात दीजिए, आइए। तो ये कुछ इनके फारसी के दो बंद सिर्फ आपको सुनाएंगे, इसलिए मैं ले आया, याद करने का वक्त नहीं था, दूसरे भी दिन भर की ऐसी मसरूफियात होती है, तो मैंने उसको जल्दी से, अब ये आसान हो गया ना, इसके शर्ट ले लो। तो वो ले आया हूँ उसी किताब से जो अभी नई ताज़ा आई है उनके, वो ताज़ा से मुरादे के 2-3 साल हुए हैं, और मुझे औकाफ़ की एक अपने मोमिन भाई ने हदिया की वो किताब भेजी मेरे लिए, और बहुत कीमती किताब है, बहुत ही कीमती है वाकई। जब मैं उसको पढ़ा तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि कितनी कीमती किताब होगी, हो सकती है ये। बहरहाल तो ये उन्होंने वहाँ पे तालीम का सिलसिला शेख जमाल के साथ शुरू किया, और होते 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 ये कमालात की मंजिलों पे पहुँचे। अच्छा, कमालात से मुराद ये कि क्योंकि इन्होंने तरीक़त का रास्ता अख्तियार किया, विलायत के सिलसिले में चले गए, अपने उस्ताद के हाथ पे बैत की, तो शेख जमाल से इन्होंने बहुत कुछ सीखा। उस ज़माने में सेहवन का नाम सेहवन नहीं था, आज भी सेहवन में हे पहले आती है ना, ऐसा नहीं था। इसका असल नाम है सेव हन, यानी सीन ये वाव और हे नून, सेव हन सब जगह ये लिखा हुआ है पुरानी किताबों में ना, सियो हन या सेव हन। और उस वक्त इसको कहा जाता था सेविस्तान, सेव और उसके बाद उस्ताद फारसी का लफ्ज आ जाता, सेविस्तान कहलाया जाता था। अब कदीम शहर है, तारीखी शहर, जाहिर है कि आप जानते ना कि मौंजोदड़ो की बेल्ट है ना ये दादू, ये पूरा वही बेल्ट है, मौंजोदड़ो वाली बेल्ट है, और सिंधु, सिंधु दरिया को कहते हैं, सिंधु का माना ही दरिया है। तो सिंधु ये जब से कहाँ से हज़ारों साल से चल रहा है, हिमालय से चल के यहाँ तक आ रहा है, तो हमेशा ये आबाद रहा, कभी उजड़ गया कभी बना, कभी उजड़ गया कभी बना। तो सेविस्तान जुनूबी सिंध में दाखिल होने का हमला आवारों के लिए एक रास्ता होता था कि इस रास्ते से हमला करते थे और दाखिल होते थे। बड़े बड़े हुक्मरानों ने यहीं से हमला किया, ठट्टे का हाकिम भी इधर से हमला करता हुआ मुल्तान तक गया था, राजा दाहिर भी यहीं से गुजरा था हमला करता हुआ, तो ये इसी ये एक मैदान भी था। तो शेख जमाल ने इनको हुक्म दिया कि तुम मुल्तान ना ठहरो, तुम सेविस्तान जाओ। सेविस्तान बदी का अड्डा बन गया है। अब मेरा कोई सिंधी भाई बुरा ना माने, उन्हीं की किताब पढ़ के तो बता रहा हूँ आपको, अब ये भी तो बताऊँगा कि फिर कैसा बन गया। बदी का अड्डा था, जब भी तो आते हैं कहाँ आते हैं औलिया अल्लाह, कहाँ आते हैं, वहीं तो आते हैं जब बदी होती है, हैं। चोरपुर था, चोरपुर थी एक जगह पाकिस्तान में, उसका नाम था चोरपुर, सारे चोर रहते थे, और वहाँ पर आगे बरी इमाम, वहाँ आगे सैयद अब्दुल लतीफ़ है मौसवी, मौसवी सादात के ना बरी इमाम, तो जब बरी इमाम आ गए तो उसका आज तक क्या नाम है, नूरपुर। चोरपुर जो था वो क्या बन गया, नूरपुर, क्योंकि तबलीग की ना। तो इनके उस्ताद इनको हुक्म दिया कि जाइए सेविस्तान जाओ, वहाँ बदी का अड्डा बन गया, वहाँ इल्म का नूर फैलाओ। किसका नूर फैलाओ, अभी बताते हैं, तारीखी दलीलें देते हैं कि कितना बड़ा आलिम था, मुजतहिद था अपने ज़माने का, मुजतहिद मुसल्लम। ये आ गए वहाँ, बदी का अड्डा था, यानी बहुत ज़्यादा उलमा थे वहाँ, लेकिन सुनते क्यों नहीं था। वहाँ एक आलिम ने बाकायदा पेशिन गोई कर दी थी इनके लिए, पेशिन गोई, बोदला तो मुझे याद है, नाम असली बुरिया लेकिन उनका लकब बोदला था। तो वो आ गए, बोदला ने जुमे के खुतबे में बाकायदा ऐलान किया कि मेरा मुर्शिद आ रहा है, मेरा मुर्शिद आ रहा है, तुम सबको ठीक कर देगा, ये मेरा मुर्शिद आ रहा है, तुमको ठीक कर देगा। तो जब ये आए तो उलमा ने इनका इस्तकबाल इसीलिए किया कि इनकी बशारत पहले ही उलमा को हो चुकी थी कि एक आदमी आएगा इस बदी के अड्डे का खात्मा कर देगा। अब समझ में आया कि क्यों आए थे, पहले तो वजह समझ में आ जाए ना कि भैया आए क्यों, यहाँ मरवंद से यहाँ तक का सफर क्यों किया, पहले मुल्तान के मुल्तान से क्यों आए थे, तो वजह मालूम हो गई। वजह क्या थी, जहालत थी, बेईमानी थी, बदी थी, बुराइयाँ थी इस सरजमीन पर। तो इनको भेजा गया कि जाओ यहाँ पे दीन का इल्म फैलाओ, यहाँ लोगों को दीनदार बनाओ, यहाँ लोगों को इल्म दो। तो लोग यहाँ जो थे वो किस लिए आते थे, इल्म की खैरात लेने, इल्म का सदका लेने। ये इस जगह बैठे और यहाँ मरते दम तक बैठे रहे, यहीं मर गए, यहां से इन्हीं ने इल्म का नूर फैलाया। कैसा फैलाया, लफ्ज नहीं कह रहा मैं, अब सुनो क्या इल्म का नूर फैलाया, तारीख में है क्या इनके बारे में, किसी को बताते नहीं, लोगों को मालूम ही नहीं कि कितना बड़ा ये आलिम है, बताने जा रहा हूं आप। रिचर्ड बर्टन जिसने हिस्ट्री ऑफ सिंध लिखी, पहले तो वो लिखता है, उसका हवाला ले लीजिए, वो लिखता है कि इस पूरे सिंध में और सिंध के अतराफ के इलाके में जितने भी मदारिस, मदारिस से मुराद टिपिकल दीनी नहीं, उस वक्त एक ही होता था ना मुसलमानों के मदरसे, जदीद तालीम भी उसी में होती थी और दीनी तालीम भी उसी में होती, अंग्रेजों ने अलग अलग किया था ना, ये मदारिस एक ही होते थे, सब कुछ यहीं पढ़ाया जाता था। तो कहते कि जितने भी मदारिस हैं वहाँ, लाल शाहबाज को इनके इंतकाल हुए कितने साल हो गए थे, 600 साल हो चुके थे, 666 पिछले साल इनकी बरसी हुई ना, तो समझ लीजिए कि 150 साल का 166 कम कर दीजिए, 600 साल हो चुके थे। हाँ 600 साल बिल्कुल सही हिसाब हुआ ना, हिजरी 750 में, हिजरी 650 में इंतकाल हुआ और ये 1200 52 की बात है जब रिचर्ड बर्टन लिख रहा है, तो 1252 या 54 हिजरी हो चुकी होगी, 54 हो चुकी शायद। खैर सन के इतने बारीकी में नहीं जाते, बस आपको एरा बता दिया, दौर बता दिया मैंने कि कौन सा एज है कौन सा एरा है। तो अब वो लिखता है कि जितने भी मदारिस हैं वहां ग्रामर की दो किताबें राइज हैं, दोनों किताबें लाल शाहबाज कलंदर की लिखी हुई। अब बता रहे किताबें अब तक मौजूद है ना, तो बता रहा हूं ना, मीजानु सर्फ और सर्फु सगीर, जितने भी मदारिस थे वहां अरबी ग्रामर जो पढ़, क्योंकि अरबी ग्रामर जरूरी थी ना पढ़ना कुरान के इल्म के लिए सबके लिए, तो आप जानते थे भाई अरबी में है सारा इल्म, तो अरबी वो उलूम हासिल करने के लिए जरूरी है कि ग्रामर पर, जिसको सर्फ और नहव कहते हैं, का दो किताबें राइज थी, दोनों की दोनों किसकी लिखी हुई, लाल शाहबाज कलंदर की। इल्म फैला रहे थे वो, समझ में आई बात। अब आइए दूसरी किताब, गुलाम मुस्तफा कासमी, बहुत बड़ा मुहक्किक कलंदर पर, उन्होंने बहुत बड़ी किताब लिखी है, उसमें वो अल्लामा ठठवी का भी हवाला देते हैं कि उस वक्त दो किताबें और लिखी उन्होंने, कहा एक किताब का नाम था मीज़ान, जो आम तलबा यानी आम लोग पढ़ाई जाती थी, मीज़ान नाम की जो किताब थी आम तलबा की, सब पढ़े, और एक किताब का नाम था लाल शाहबाज की अक्द, ऐन काफ और दाल, अक्द गिरा या उग्द कह लीजिए, अक्द मुहैदों को भी कहते हैं, अक्द अहद को भी कहते हैं, का अक्द नाम की किताब, वो आम आदमी की नहीं थी, वो उलमा को पढ़ाई जाती थी, दानिश्वरों को पढ़ाई जाती थी। तो क्या लेवल था उसके इल्म का, शाहबाज कलंदर के इल्म का लेवल क्या हुआ, तो वो लाल शाहबाज कलंदर था जो यहां इल्म फैलाने आया था, इल्म और दानिश फैलाने आया था, उसने बदी को उखाड़ के फेंक दिया सेविस्तान से, उसको इल्म का गहवारा बना दिया। अब फिर क्या 600 साल बाद हो गया मामला, जो इल्म का मरकज है, जो हिदायत का मरकज है, क्या हुआ उसको, हमारे अहबाब को गौर करना चाहिए ना सबको, कि मानते हो मोहब्बत भी करते हो और देखो क्या हो रहा है, वो एक आलिम है, एक मुजतहिद है भाई। ये ठीक है कि वो डूबा हुआ है इश्क में, ऐसे नहीं, एक लाइन उसने एक रास्ता लग लिया ना तबलीग करने का, एक अंदाज सरजमीन के हिसाब से, जैसी जमीन थी वैसा उसने तबलीग का वो तरीका, जिसको तरीकत के पर था वो, उस तरीकत में वो तरीका उसने इख्तियार किया, लेकिन फैलाया तो इल्म, लोगों के दिलों में अहले बैत की मोहब्बत डाली। अहले बैत की मोहब्बत डालने का मतलब क्या होगा, कि जब इनके दिल में अहले बैत की मोहब्बत आएगी तो ये खुद ब खुद इल्म की तरफ भागेंगे, सीखेंगे ना, पढ़ेंगे ना, कि भाई मालूम तो किया जाए, वहां तक पहुंचा तो जाए। एक सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। बस उसी में क्या करते थे, इनका फारसी कलाम बहुत, फारसी बहुत बड़ा फारसी कलाम है, जो तकरीबन सैकड़ों सफ़ों में तर्जुमा हुआ है, मेरे पास मौजूद है, उर्दू में भी तर्जुमा हुआ है, सिंधी में भी उसका तर्जुमा हुआ है, इंग्लिश में भी उसका तर्जुमा हुआ है, ये चारों तर्जुमे मेरे पास इत्तेफाक से अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं, लाल शाहबाज कलंदर के मदार के। तो मुझे जब ये लोगों ने कहा तो मैंने कहा भाई क्या बताएं लोग, मतलब लोग तो कुछ और सुनना चाहते हैं, वो तो चाहते हैं कि ऐसा जिक्र करो कि बीच में ऐसा नारा लगे कि मज़ा आ जाए, है ना, वो नारा तो याद है कलंदर का, ये नहीं पता कि कलंदर है कौन। अब समझ में आ रही है बात, बुरा लगता है तो बुरा लग जाए, मेरा काम है कि उस बुजुर्ग, उस वलीउल्लाह और उस खिदमत गुजारे मकतब अहले बैत, घर बार छोड़ के कैसी सरजमीन में आया, एक झुलसती सरजमीन में, कैसे इलाके में, कि सहरा है, मैदान भी है और पहाड़ी भी, तपता हुआ पहाड़ भी, गर्मी के मौसम में कभी जाके देखे तो अंदाजा होगा ना आपको कि मौसम कैसा है, सब कुछ है वहां, सब छोड़ छाड़ के वहां पर आया बुढ़ापे में, क्यों, हुक्म हुआ है, हुक्म हुआ है कि वहां जाओ और दीन की रोशनी फैलाओ, दीन का इल्म फैलाओ, तो आके इस पूरे खित्ते को मौलाई बना के चला जाता है, एक आदमी, एक आदमी आता है पूरे इलाके को मौलाई, क्या किया लोगों ने, उसका नाम याद रखा, उसकी तालीमात भूल गए, नाम याद है, तालीमात को फरामोश कर दिया, तालीमात को भुला दिया। अल्लाह के बंदो मालूम होना चाहिए ना कि वो कौन है, मैंने तो अभी आपको कुछ भी नहीं, दो चार बातें, क्योंकि जाहिर है कि वक्त जो है ना वो नहीं है मेरे पास, मुझे आगे भी बढ़ना है, लेकिन क्योंकि चलो मुझे तहिदीन का जिक्र हो रहा है ना, तो मैंने कहीं बता दूं कि ये भी मुज्तहिद था भाई, कुछ और मत समझिएगा शाहबाज कलंदर को। हाँ ये अलग है कि इन्होंने रास्ता ऐसा इख्तियार किया जिसकी इस खत्ते में जरूरत थी, जिस रास्ते की जरूरत थी उस रास्ते पर चले, पूरे इलाके को मौलाई बना के चले गए। उसके बाद क्या हुआ, लोगों ने याद रखा, तालीमात को बुला दिया। अभी एक कसीदा है जिसके आप एक शेर सुनते ना, हैदरियम कलंदरम मस्तम बंदे मुर्तजा अली, इसके 40 बंतो हैं, और कितने हैं मुझे नहीं मालूम, 40 बंद हैं, 40 बंद मौजूद हैं, क्योंकि ऐसा हुआ ना कि ज़माने के दस बुरदे ज़माना से महफूज ना रह सकी ना बहुत सारी चीज़ें, 40 बंद। मैंने इसमें सिर्फ 2 बंद का इंतखाब किया है ताकि आपको उसके अकीदे का मालूम हो जाए। अच्छा, उसके इस बंद में एक शेर लोग पढ़ते हैं, पूरा बंद नहीं पढ़ते, वो एक शेर पढ़ते हैं, सर गरो है तमाम रिंदाना के सगे कुए शेरे। मैं वो पूरा बंद आपको इसलिए लाया हूँ, 2 बंद, कि आपको मालूम हो जाए कि लाल शहबाज कलंदर का इल्म क्या था और उसका अकीदा क्या था। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अब देखें, ये कोई आलिम कह सकता है ना, जाहिल आदमी थोड़ी कहेगा ऐसी बात। कहते हैं कि कायम आले मुस्तफ़ा मेहदी, कायम आले मुस्तफ़ा मेहदी, कातिल खस्म मुर्तज़ा मेहदी। खस्म कहते हैं दुश्मन को, आसान फारसी है बिल्कुल। कातिल खस्म मुर्तज़ा मेहदी, बखुदास्त इमाम माँ मेहदी। कहते खुदा की कसम हमारा इमाम मेहदी है। बखुदास्त इमाम माँ मेहदी, चूँ अली मजहर खुदा मेहदी, जैसे कि अली मजहर खुदा है, यानी अली की तरह मेहदी भी मजहर, चूँ अली मजहर खुदा मेहदी, बस बिल्कुल ऐसे अली की तरह मेहदी भी मजहर, मजहर खुदा, खुदा नहीं। जाते हैं शाहबाज कलंदर के मजार पे और नुस्खैरियत का प्रचार करते हो। ये वही शाहबाज कलंदर कह रहा है, खबरदार अली को खुदा मत कहना, मजहर खुदा। जान बच गई, मजहर खुदा कहा, अकीदा बच गया, दीन बच गया। मजहर सिफात खुदा, खुदा नहीं, मजहर खुदा, मजहर सिफात खुदा और होता है। इसलिए मैंने कलंदर के मिसरे पढ़े कि कलंदर पे इल्ज़ाम ना दे दिया करो, कलंदर भी वही मानता है जो अल्लाह के रसूल ने बताया है, उससे एक हर्फ आगे नहीं है शाहबाज कलंदर। 40 बंद है, मैं तो सिर्फ आपको 2 सुनाने जा रहा हूँ। सलावात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। चूँ अली, यानी अली की तरह मजहर खुदा मेहदी, मेहदी भी मजहर खुदा है। दर फिर वो इसकी मतलब की इस शेर की बार बार तकरार है, दरियम कलंदरम मस्तम बंदे मुर्तजा। इससे इस लफ्ज़ से लोग डर, देखो ना बंदा बताए, क्या बंदा, बंदे का मतलब होता है गुलाम। जैसे कुरान में वान कुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम, अपने बंदों की इबाद, अब्द का मतलब बंदा है ना, तो यहाँ क्या अपने बंदों की वो मुराद है। बंद से बंदे से मुराद क्या है, जो तुम्हारे जवान, जो तुम्हारी इख्तियार में है, चाहे वो लड़के हों चाहे वो गुलाम हो। अब्दुल रसूल का मतलब रसूल का बंदा उस माने में नहीं होता, वो जाहिलों को समझ में नहीं आता, नाम बदलवा देते, नहीं 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 अब्दुल्ला रसूल से आप कर दो, अब्दुल रसूल ना रखना, शिर्क हो जाएगा बेदर। अब्दुल रसूल का मतलब है रसूल का गुलाम, अब्दुल अली का मतलब है अली का गुलाम, अब्दुल हुसैन का मतलब है हुसैन का गुलाम। समझ में आ रही है बात। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अब्द बेमाना गुलाम, बंदे मुर्तजा अली हस्तम, यानी उसका गुलाम बेदाम हूँ, अभी आगे वाजे हो जाएगा। अब देखिए वो बंद जिसका एक शेर, एक मिसरा पहला एक मिसरा आखिरी पढ़ते हैं लोग, अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। हैदरियम कलंदरम मस्तम बंदे मुर्तजा अली हस्तम, सर गरो है तमाम रिंदानम, ये लाल शाहबाज कलंदर की शायरी है। सर गरो है तमाम रिंदानम, रह बरे सालिकानो आरिफानम। मैं जितने भी ये सैर सलूक के ना सूफिया हैं, औलिया हैं, उरफा हैं, आरिफ हैं, सब का रहबर हूँ। अब ये ताली है ना, ताली किसे कहते हैं, अपने आप को बड़ा बना के पेश करना ना, ये तो गुरूर की अलामत है। लेकिन देखिए क्यों कर रहा है, वजह आखिर में बता दे। ताली जायज़ नहीं होती, शेर में ऐसा होता ना अपनी तारीफ करें तो उसको कहते हैं क्या, ताली, कि अपने आप अपनी उलूवियत बयान करना, अपनी बुजुर्गी बयान करना। एक सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अब इसकी वजह क्या है, ये क्यों ताली कर रहे हैं, जो कि नाजायज नहीं कर, ये क्यों कर रहे हैं, अब आगे जो वजह आएगी। पहले सुनिए, सर गरो है तमाम रिंदानम, जितने भी रिंद हैं, मैं खाने विलायत, यहां मुराद क्या है, मैं खाने विलायत, वो बूटी नहीं है, हराम हराम हराम, समझ में आई। शाहबाज कलंदर पकड़ेगा कयामत के दिन बूटी वालों को सबको। सलावात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। एक आलिम के रोजे में, एक आलिम के जिसने यहां दीन फैलाया, उस पर जाके हरकतें करते हो, शर्म नहीं आती है। रहबरे सालिकानो आरिफानम, कहते हैं सर गरो है तमाम रिंदानम, रहबरे सालिकानो आरिफानम, हादिये आशिकाने मस्तानम, मैं हादी हूं हिदायत करने वालों किसका, ये जितने भी आशिक हैं विलायत के, समझ में आ रही है? यह सारा महवर क्या है, हैदरियम कलंदरम मस्तम, ये वो चल रहा है, विलायत चल रही है, सारी विलायत का है, विलायत ये यही कह सकते हैं और ओरफा कह सकते हैं और कोई नहीं कह सकता। हाद ये आशिकार मस्तानम, ये जितने अली की विलायत में खो चुके हैं, मस्त हो चुके हैं, मैं इनका हादी हूँ, यानी मैं इनकी हिदायत करता हूँ ताकि ज्यादा पी के बहक ना जाए, समझ गए ना? ये है वो आरिफों की मंजिलें, उरफा की मंजिलें, कि मुझसे भी बाद मौलवी नाराज हो जाते हैं, क्या करते हैं आप बैठ के बहकाने लगते हैं, मैं बहका नहीं रहा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अली का मैखाना कौन सा मैखाना है, जो जरा सी पी के बहक गया उसे महकदे से निकाल दो, यहाँ कम नजर का गुजर नहीं, यहाँ अहले जर्फ का काम है। और जरा सी पी के बहकने वाला कौन होता है, नुशहरी, हो गया ना होश आवाज खोदे, कहते हैं हादी हूँ, हिदायत करता हूँ, पी के बहक मत जाना, पी के बहकने वालों को बहक हिदायत करने के लिए मैं बैठा हूँ, लाल शहबाज कलंदर कहते हैं उनको ठीक करने के लिए मैं बैठा हूँ, सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। हादिये आशिकाने मस्तानम, अब ये ताली है ना, सब तीनों मिस्रों में ताली है ना, तीनों में ताली, सरगरो है तमाम रिंदानम रहबरे सालिकानो आरिफानम, हादिये आशिकानो मस्तानम, क्यों? अब कहता है सगे कुए शेरे यजदान, मैं इसलिए इन सबका रहबर हूं, हादी हूं, रहनुमा हूं, पेशवा हूं, सरदार हूं, क्यों? क्योंकि मैं अली के टूचे का सग हूं, के सगे कुए याल, समझ आए, के सगे कुए सग सग सग, अब समझ में आया कि कलमे सादिक क्यों है, उसका बाप कलबे हुसैन क्यों है, उसका भाई कलबे आबिद क्यों है, ये वो सग हैं जो इन कूचों के सग हैं, और इन कूचों के सग होने के नसीब में क्या मिल्लतों की पेशवाई होती है, मिल्लतों की रहनुमाई होती है, मिल्लतों की सरदारी होती है। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। चलिए अब एक और पढ़ी देना, अब एक ही रह गया, तो क्योंकि तीन आ गए थे स्क्रीन शॉट में, शायद इसीलिए आ गए थे कि वो भी पढ़ दूं, कि सगे कुए शेरे यजदानम हैदरियम कलंदरम मस्तम बंदे मुर्तदा अलीस्तम चूब आदाए ऊ कमर वस्तम, बस बिल्कुल ऐसा है जैसे मैंने उसके दुश्मनों के खिलाफ कमर कस लिया, चूब आदाए ऊ कमर वस्तम तबर हैदरीस्त दर्दस्तम, तबर तलवार से उससे मिलता जो हथियार होता है, तलवार तो नहीं होती लेकिन तबर उसको कहते हैं, चौड़ी चौड़ी तलवार थी, चौड़ा होता है, बुगदे से बड़ा और तलवार से छोटा, तबर हैदरीस्त दर्दस्तम, और वो तबर हैदरी की छबर, या यूं कह लिए हैदरी की शमशीर मेरे हाथ में है, हैदरी शमशीर मेरे हाथ में, मैंने उसके दुश्मनों के खिलाफ कमर कस ली और वो हैदरी शमशीर मेरे हाथ में आ गई, कातिले आ जमी मन हस्तम, इन तमाम अली के दुश्मनों का कातिल मैं हूं, कातिले आ जमी मन हस्तम जरबे लानत जदम जबरदस्तम, और मैंने अली के दुश्मनों पे लानत की है। ये सिंध औकाफ की छपी हुई किताब से पढ़ रहा हूं, FIR उधर कटवाना, सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर, समझिए ये जो छपी है जिसे इसीलिए उस किताब से लाया हूं, ये और भी जगह है, ताकि सिंध गवर्नमेंट की भी तो कोई FIR काटो, छाप दिया ये शाहबाज कलंदर का कलाम, लाल शाहबाज कलंदर का कलाम, मीरकसम फैज कलंदर मुसन्निफ मौलाई मुनव्वर अली मुहैसर, अल्लाह उसको सलामत रखे, सलावात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। बस चू बाद आए ऊ कबर बस्तम तबर हैदरी दर्दस्तम कातिले आ जमी मन हस्तम जरबे लाना जदम जबरदस्तम, मैं इतना ताकतवर हूं कि मैंने अली के दुश्मनों पे जरबे लानत लगाई है, हैदरियम कलंदरम मस्तम बंद है मुर्तजा अली हस्तम, ये है लाल शाहबाज कलंदर, सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। चलिए ये मेरे मुझे कुछ ना कहिएगा, यहीं बैठे हुए सामने ही बैठे हुए, जिन दोस्तों की ये ख्वाहिश थी, एक बार बुलंद आवाज से सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। तो है ना, मुझे तो ही तो है ना जिसका मैंने जिक्र किया, उन्हीं का मैं जिक्र कर रहा हूं, तो इस मुजाहिद के हालांकि मैंने कुछ भी नहीं किया है, आटे में से नमक निकाला है आपके लिए, बस कभी आप रखेंगे ना तो ये नाचिस फिर बताएगा आपको लाल शाहबाज कलंदर क्या है। 5 रखिए, 1 भी नहीं। और मैं इसलिए भी पढ़ना चाहता हूं कि जो आगे पढ़ने वाले खुदा के बंदो कुछ तो पढ़ो, पढ़ के पढ़ दिया करो लाल शाहबाज कलंदर पे। 5-6 जगह मैंने सुना कुछ भी नहीं पढ़ा, बस उसके सारी तवज्जो इस पे के अभी पीछे वाला नहीं बोला, दाएं वाला नहीं बोला, वो बाहर बैठे वाला नहीं बोला। जब तक वो सारे नहीं बोले 20 मिनट उसके इसमें निकाल लें, उसको 20 मिनट निकाल लेना आपका टाइम। मेरी मुश्किल ये है कि मैं 4 मजलिसों का वो 1 मजलिस में आपको कह दिया, तो मुझे लोग कहते हैं आप अजीब आदमी, ठहर ठहर के पढ़ा करें, थोड़ा लोगों को भी बोलने दिया करें, आपका टाइम भी बचेगा और मैटर भी बचेगा। वाह बेटा, तमाम तमाम मोमिनीन की सेहत और सलामती के लिए एक बार और बुलंद आवाज से सलवा दीजिए। अब आइए कम से कम 2 शहीदों का तो जल्दी जल्दी जिक्र कर दें। अल्लामा हुर्रे आमिली सुना है ना नाम, फिर वही जबल आमिल आ गया, फिर जबल आमिल आ गया। अल्लामा हुर्रे आमिली साहेब वसाइलु शिया, बिहारुल अनवार के बाद सबसे बड़ी हमारी हदीस की किताब, 20 जिल्दें वही मोटी मोटी, मेरा ख्याल है तकरीबन कुछ 33,000 के करीब, लगभग कुछ कम या कुछ ज़्यादा हदीसें हैं इसमें वसाइलु शिया में, 33,000, जिससे मुश्तहिदीन सहारा लेते हैं, जैसे बिहार से लेते हैं ना मतलब उसूल काफी, इस तरह वसाइलु शिया से और अलग हैं वसाइलु शिया। अल्लामा हुर्रे आमिली का मकबरा मालूम है ना कहाँ है, मशहद में, हुसैन इनकलाब में, जहाँ जाते हैं उर्दू की मजलिस होती है, हमेशा होती है, हर रोज़ होती है। वो हमारे मरहूम अल्लामा शब्बीर नजफ़ी साहब पढ़ा करते थे किसी ज़माने में, उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे, वहीं मशहद मुकद्दस में ही वो दफन है, उनको वहीं जगह मिली हरम के कब्रिस्तान में, तो वो वहाँ पर उनका मदफन है, यानी मशहद में आखिरी उम्र में रहे ये अल्लामा हुर्रे आमिली। तो ये कौन है, साहिब वसाइलु शिया, ये इतना बड़ा अपने ज़माने का मर्जे के इसके मुकाबले का कोई दूसरा, हर एक का इत्तिफाक था, मर्जे मुतलक किसे कहते हैं कि अपने जमाने में एक बस मुज्तहिदीन हैं और भी मर्जे, मर्जे मुतलक ये, यानी आलम एक होता है आलिम, एक होता है आलम फल आलम, तो ये आलम फल आलम थे। अगर कोई आलम है तो उससे भी ये आलम थे, क्योंकि हो सकता है 2-4 आलम हो, तो आलम फल आलम, अगर कोई आलम है तो ये उनसे भी बड़े आलम, आलम यानी वो अकबर के वजन पे ना, कबीर बड़ा और अकबर सबसे बड़ा, ऐसा होता है ना, तो अकबर वही आलम उस वजन के ऊपर। एक सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। और इसका अच्छा इनका खानदानी, इनका मैंने जिक्र क्यों किया आपके सामने कि कब लोग जानते होंगे, शेख अली नाम है, शेख अली हुर्रे आमिली, इनका शजरा कहां से मिलता है ये बताना चाह रहा हूं आपको। देखें कैसा इनाम देता है अल्लाह, तो देते ही देता है, मेरा मौला हुसैन भी देता है, मेरा मौला हुसैन इनाम देता है, क़यामत तक के लिए इनाम देता है। हुर्रे आमिली इनाम है दुनिया में किसका, हुसैन का, किसको, हुर को, हुर इब्ने यज़ीदुर रियाही, उनकी औलाद में अल्लामा हुर्रे आमिली, इसलिए अपना लकब हुर रखा था, नाम अली है, शेख अली हुर्रे आमिली, क्यों कि मेरा जद हुर है, तो फख्र करते थे ना, यानी इस बेटे ने फिर दोबारा हुर की नस्लों को जिंदा कर दिया। अब हुर्रे आमिली की नस्ल मौजूद है सारे ईरान इराक में, और सब जानते हैं कि ये हुर की औलाद हैं, हुर इब्ने यज़ीदुर रियाही। तो देखा हुसैन ने कितना इनाम दिया, जब उसकी नस्ल में इतने बड़े आलिम को रख दिया, ये बता दिया कि अगर इल्म ना होता तो हुर कभी भी इधर ना आता, ये इल्म था जो हुर को लेकर आया, तो इतना बड़ा आलिम कहाँ बर्दाश्त हो सकता था। बड़ी तफसीलात हैं, लेकिन मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि आज बहुत देर हो गई मुझे ट्रैफिक में, बहुत वक्त भी बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन चले वो थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे जहाँ भी हो सकेगा। बस इनको भी क्या किया गया, एक ऐसा जहर दिया गया कि दावत से घर तक नहीं पहुँच पाए, और ज़ईफ आदमी जहर बूढ़ा था, तो इनको जहर देकर शहीद किया गया। यानी हमारे मुज्तहिदीन के साथ भी वही हुआ, ऐसा लगता है कि सब मुकम्मल तौर पर सीरत पर अमल कर रहे थे, या तलवार से मारे जा रहे थे, या जहर नगा से मारे जा रहे थे, या जहर से शहीद किया जा रहा था, और पहले से इल्म था मौत तो आनी है ना, तो खुश रहते थे, इसलिए खुश थे कि भाई मौत तो आनी है, लेकिन मैं जानता हूं कि मुझे शहीद किया जाएगा। आगा कैसे शहीद किया जाएगा, कब, मैं ख्वाब देख चुका हूं, मुझे बशारत हो चुकी है, मुझे बताया, इसलिए हमेशा खुश रहते थे। लोग पूछते थे दर्स पढ़ाते पढ़ाते हंसते की वजह क्या है, खुश कहते थे भाई मैं उस तसव्वुर से खुश हो रहा हूं कि जब मैं शहीद किया जाऊंगा, क्योंकि मौत तो आनी है ना, मौत तो बरहक है। तो ये होते हैं हमारे मराजे और हमारे मुश्तहिदीन, समझ में आए, दुनिया से टकराए और हर सदी में हर जमाने में दिफा किया हमारा, हम जबाने खोल देते। मैंने इनका मुख्तसर रखा, अब जिस मुजाहिद का जिक्र कर रहा हूँ, वो इतना बड़ा मुजाहिद है, मुज्तहिद और मर्जे, जिसका बेटा नूह का बेटा था, जिसका बेटा बाप को फांसी हो रही थी, सामने खड़ा हुआ तालियां बजा रहा था, आयतुल्लाह फजलुल्लाह नूरी, अल्लामा नूरी के खानदान से, इनके भांजे हैं गालिबन अल्लामा नूरी के, अल्लामा नूरी बहुत बड़ा नाम है। ज़ाहिर है कि वो, मैं शुहदा का जिक्र कर रहा हूँ ना, फिर उनका जिक्र करूँगा, फिर 10-15 मिनट निकल जाएंगे। तो अल्लामा नूरी के भांजे हैं गालिबन, खारजादे, हाँ भांजे ही हुए, बहन के बेटे, फजलुल्लाह नूरी। सारी तालीमात से फारिग होने के बाद तेहरान में, कौन सा ज़माना है, 19वीं सदी का आखिर, 1887 तंबाकू की तहरीक चलती है, तहरीक तंबाकू जिसको कहते हैं, आयतुल्ला मुजद्दिद शिराज़ी जिनका फतवा आया था कि तंबाकू पीना, तंबाकू नोशी हराम। खुदा का शुक्र है हमारियाँ नहीं थे, वरना हमारियाँ कितने बड़े बड़े काबिल कतलो, हलाल मोहम्मद को हराम कर दिया, ये तो हलाल मोहम्मद तो क़्यामत तक हलाल, हराम मोहम्मद तो क़्यामत तक हराम, ये कैसा मौलवी, कैसा मुश्तहिद है, हलाल मोहम्मद को हराम कर रहे हैं, ये क्या हुआ। यही तो तुम्हें बताने जा रहा हूँ कि नाइब इमाम कहते किसे, एक साजिश हुई थी ईरान के खिलाफ, यानी ईरान पे कब्जा करने की, ब्रिटिश कंपनियां जैसे हमारी आ गई ना माशाल्लाह, बिजली ले खरीद ली, गैस खरीद ली, हमें सहूलत नहीं दी, उनको सहूलतें दे के कमीशन दे के, ये लो इतने अरब तुम्हारा बिजली हमारी, इतने अरब तुम्हारा गैस हमारी, इतने अरब तुम्हारा पानी भी हमारा, क्योंकि अब तो ये चल रहा है ना, समझ गया ना, मिनरल वाटर चल रहा है, नल का पानी कैसे पियेंगे आप, जिगर छलनी हो जाएगा। गरीब आदमी इसे तो बीमारी में मुबतला है, या बीमारी में मुबतला या फिर एकदम प्रूफ हो गया, जरासीम अंदर जाके खुद ही मर जाते, उसके अंदर इतने हो गए, वो जो जरासीम जाते हैं वो खुद ही मर जाते हैं भाई, ऐसा भी होता है, हाँ ऐसा हुआ हुआ ना। तो ये मुआहिदा ब्रिटिश कंपनी ने शाहों को उनके वजीरों को पैसे दे के, जैसे कि आज होता है, है? इतने करोड़ तेरे ये मुआहिदा करा दे, ये नहीं मालूम कि अपनी आज़ादी बेच रहे हो, अपने वसाइल बेच रहे, सोना है निकाल नहीं सकते, तेल है निकाल नहीं सकते, गैस है निकाल नहीं सकते, महदूद एक दो कुएं खोद लो, पब्लिक को खुश कर दो, बजाओ है नहीं निकाल, क्यों, साम्राज्य मुआहदे पहले हो गए ना, ये इतने करोड़ इतने अरब तुम्हारे और ये हमारे पास है, हमारी जात के बारे नहीं करो, क्योंकि उनका बिकना बंद हो जाएगा, दुकानदारी बंद हो जाएगी, आपके यहाँ सब कुछ निकल आए तो, समझ रहे मेरी बात, ये साम्राज्य खेल होता है, कोई समझे या ना समझे है यही। तो हुआ ये कि ब्रिटिश कंपनी ने जितने तंबाकू की मार्केट थी उसे खरीद ली रिश्वत दे के, कि तंबाकू हम बनाएंगे हम बेचेंगे हमारे सिवा कोई नहीं, ये आगाज था ना, इसके बाद क्या होता, फिर वो जंगल खरीदे जाते, फिर वो जंगल उनके कब्जे में होते, फिर वो अपनी मर्जी की कीमतें रखते, अपनी मर्जी से शॉर्टेज करते, अपनी मर्जी से मार्केट में बेचते, अपनी मर्जी से कीमत रखते, किसी के बाप में जुर्रत नहीं कि तेल कंपनियां पैसे बढ़ा दें, हमारा वजीर आजम रोक के बता दे, हिम्मत है तो, चाहे वो 15 दिन ही एक हफ्ते बाद बढ़ाएंगे तो रोक लो। बिजली की कीमत, इनमें हिम्मत नहीं है हुकूमतों में कि बिजली की कीमत बढ़ने से रोक दें, वरना रोक नहीं देते, हालांकि खरबों रुपये वो हमसे खा रहे हैं, लूट रहे हैं, हमें नोच रहे हैं, लेकिन मुआहदे ऐसे हैं, वो दिखा दे फौरन बैरुल अक़वामी अदालत में जाएंगे, ये मुआहदा था इनसे, है ना, आप तो नहीं जीत सकते, जीतेंगे तो वही ना, और जीतने के बाद और इतने अरब डॉलर और दे दो उसको, इतने करोड़ डॉलर और दे दो, जीत गया वो जाओ देते रहो उसको, समझ में आ रही है मेरी बात, ये खेल होता है साम्राज्य बच्चों, समझ लो, नहीं बताएगा कोई तुम्हें, और मजलिस में तो बिल्कुल भी नहीं बताएगा, क्योंकि उसे बताया मजलिस में खा बता के जूते खाने हैं क्या, ना वाहवा होगी ना हाहा होगी, कुछ भी नहीं होगा, इन बातों से कहाँ होती है मजलिस, लेकिन मेरी मजलिस इन्हीं बातों से होती है। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर, समझ में आई बात, मुआहदा हो गया। सैयद जवालुद्दीन अफगानी हमारा है, याद रखना, लेकिन इतना बड़ा आलिम है कि जितने मकातिब थे उसको अपना कहते थे, ऐसा होना चाहिए ना आलिम को, सब कहें हमारा है, सब कहें हमारा है। तो जमालुद्दीन अफगानी जो पूरे आलम इस्लाम में तहरीक चला रहा था कि मुसलमानों को एक करे किसी तरह, बेचारा कामयाब नहीं हुआ, लेकिन नाम छोड़ गया अपना। जब ये मुआहदा हुआ खत लिखा उसने, तुर्की में था, तुर्की से खत लिखा आगा को, आगा मुजद्दिद शिराज़ी को, कि ये मुआहदा हो रहा है, इसके नुकसान थे ये है ये, आप मर्जे हैं, मेरे इख्तियार में नहीं है लोग, लेकिन जब आप फतवा देंगे लोग आपका हुक्म मानेंगे और ये माहिदा मनसूख होगा। आगा शिराजी को जमालुद्दीन अफगानी का ये खत मिला, ये पूरी दस्तावेजात है मेरे पास, यानी किताबी सूरत में मेरे पास मौजूद है। तो खत मिला, उन्होंने माहिरीन को बुलाया, मुश्तहिद ऐसे फतवा नहीं देता जैसे तुम समझेगा, तो खोल देगा जबान और फतवा दे देगा, नहीं, पूरी नजर होती है मुश्तहिद की, मर्जे पूरा रखता है, दलाई रखता है, फिकी दलील रखता है। बुलाया माहिरीन को, बिठाया मीटिंग में, क्या मसला है समझाओ मुझे। और जब वो समझ में आ गई बात कि हाँ ये इब्तिदा है, इंतहा पता नहीं कहाँ जाएगी, काश हमारे वालों ने भी साम्राज्य मुहिदे करते वक्त किसी बाशऊर से पूछ लिया होता कि तुम भी बाद में उनके पालतू बन जाओगे, तुम हिलाते फेरोगे उनके पीछे पीछे, उनकी मर्जी तुम्हें पनाह देंगे, उनकी मर्जी नहीं होगी तो तुम्हें बिल्ली की तरह, कुत्ते की तरह कैंची गले में डालेंगे, पकड़ लेंगे तुम्हें। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर, ऐसी है ना। सुन लीजिए सुन लीजिए, ये बात रह जाएगी इंशाल्लाह, कानों में रहेगी, रिकॉर्ड में रह जाएगी, माने या कोई ना माने, रिकॉर्ड पे बात होनी चाहिए कि कोई किसी ने बताया था, कोई दीवाना बोल रहा था। बस जब ये हुआ, आ गए शिराजी ने फौरन फतवा दिया, पूरे ईरान में उनके शागिर्द आयत उज़ाम दीगर शहरों में, जिनमें शहीद का जिक्र आने वाला है फजलुल्लाह नूरी, उस वक्त जवान तो बहरहाल अधेड़ है, फांसी तो उनको बाद में, इस वक्त बहरहाल जवान है 35-40 साल, फौरन फतवा के आज से तंबाकू नोशी हराम, जिसने तंबाकू को हाथ लगाया हराम काम किया। अब बताइए कहाँ हराम है, इस्लाम में तो हराम नहीं है, ना हुए वो हमारे यहाँ। फिर उनको गली गली में बैठा हुआ फुटपाथिया बताता कि शरा में हराम क्या होता है, हलाल क्या होता है, वो समझाता। आयतुल्ला शिराजी को बिठा के समझाता, बैठो तुम्हें क्या पता मौलवी, हम तुम्हें बताएं ये हलाल है मोहम्मद है, हराम कहाँ से होगा। समझ में आई बात, यह है मर्जे, यह है नाइब इमाम का हराम। और कैसा अमल हुआ पूरे ईरान में कि टीले लग गए तंबाकू के, लोगों ने घरों से, दुकानदारों ने दुकानों से, ताजिरों ने अपने गोदामों से निकाला, जलाना शुरू कर दिया तंबाकू। क्यों? कहा नाइब इमाम का फतवा आ गया, मुश्तहिद का फतवा आ गया, पीना हराम। और वही मशहूर वाकया तारीख का, नासिरुद्दीन शाह काचार का जमाना है, अपनी मलका से कहा था चिलम चाहिए, बना के लाई, बना के लाई, सामने लाई, उठा के तोड़ा उसके सामने हुक्का, फेंक दी चिलम, हुक्का यानी तोड़ दिया उनकी चिलम। वो हैरान, ये क्या हुआ? क्या वो तेरा हुक्म था? ये नाइब इमाम का हुक्म है, याद रख, तेरा नाराज होना मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन अगर मेरा नाइब इमाम मुझसे नाराज हो गया तो मेरा जमाने का इमाम मुझसे नाराज हो जाएगा। ये होता है अकीदा, ये होता है यकीन, के नाइब इमाम जब कह रहा है तो कह रहा है। नतीजा क्या हुआ? 3 दिन में बैठ गई हुकूमत भी, ब्रिटिश कंपनी भी बैठ गई, बाबा खत्म करो मुआहिदा, मुआहिदा खत्म हो गया, भाग गई वो कंपनियां ईरान छोड़ के, जब फरार हो गई फिर वापस लिया फतवा का, आज से हलाल है, जाओ पियो, खूब सुट्टे मारो, जाओ सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। समझ में आया? ये फकीह जानता है कि कब क्या हुक्म देना है। अभी कल ही तो पढ़ा था मैंने, कल पढ़ा था ना, घर में रहना कौन सा हराम होता है भाई, लेकिन फकीह कह रहा है, खुमैनी कह रहा है, आज रात घरों में रहना हराम। कई मर्द औरत बच्चा अपने घरों में ना रहे तो हमारे यहां होते कहते कहां से हराम हो गया घर में रहना भाई, तो बल्कि औरतों को तो घर पर बैठने का हुक्म दिया अल्लाह ने, घर खबरदार, घर तुम्हारी अच्छी मस्जिद, तारिक रोड पर जाना मना नहीं होगा। लेकिन अगर तो मौलवी कहते, मौलवी ने कैसे कह दिया भाई, औरत की तो सबसे अच्छी मस्जिद भी घर है, घर में रहे वो, और ये बातें कहां कर रही होगी, शॉपिंग सेंटर में खड़ी हुई, वहां खड़ी हुई तनकीद कर रही होगी मर्द तकलीफ पे। मोमिना बामल उनकी बात नहीं कर रहा, ये उनकी बातें कर रहा हूं जो माशाल्लाह मार्च वालियां। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। समझ में आई बात? समझ में आ गई बात? ये नाइब इमाम दीन और मिल्लत की मसलहत जानता है कि मेरी कौम गुलामी में चली जाएगी, इसको गुलामी से बचाना है। उनका इंतकाल हुआ, हालांकि उनके बारे में भी शुबहात हैं कि आयतुल्लाह मुजद्दिद शिराजी को भी मारा गया था इंतकाम के तौर पे, क्योंकि देखा था ना कि एक फतवा, बादशाहतें ढह गई, खत्म हो गई बादशाहतें। आज भी मुखालिफिन सुन लो, सुन लो, ये नाचीज तुम्हें बता रहा है, खुदा की कसम आज भी मर्जियत में इतनी ताकत है कि अगर आज भी नाइब इमाम कोई फतवा देगा तो ये खरबों डॉलर जो साम्राज्य ने तुम जैसों पर पूरी
माल को डूबता हुआ। अल्लाह हसरत से देखोगे डूबते हुए अपने माल को। आज भी अगर मर्जे हुक्म देगा तुम देखो क्या होता है। तुम्हें मालूम ही नहीं है कि इमाम का हाथ इनके सरों पर होता है। ये ऐसे नाइब इमाम नहीं होते, कदम कदम पे इमाम इनकी रहनुमाई कर रहा होता है। जबी तो आज तक तशय्यो जिंदा है। सिर्फ जिंदा नहीं सुरखरू है, मजलूमों को जिंदगी दे रहा है। तो उन्हीं में एक मुजाहिद का क्या नाम है, आयतुल्ला फजलुल्ला नूरी। और जब बात आगे बढ़ी, मोहम्मद अली शाह का जमाना आया, अंग्रेजों ने बदबख्तों ने इसको खरीदा, जैसे आज खरीदा हुआ है ना, तो मशरूता का इनकलाब जो कहलाता ईरान में वो आया। क्या मतलब? चमक, मगरबियत, पर्दा खत्म, कहबे खाने यानी कैसीनो, जहाँ जुआ हुआ सब सब कुछ होता हो। कैसीनो समझने बस वही है, कहबे खाने शराब खाने सब आज़ाद, कोई पर्दा नहीं, बेहूदगी। क्यों? मॉडर्निज्म आ गया, जदीद तरक्की याफ्ता दौर आ गया। पढ़ना लिखना नहीं है और कुछ नहीं करना, कपड़ों से पता चले तरक्की याफ्ता है। कपड़े बताएंगे, अब कपड़े और लिबास बताएगा कितनी तरक्की की है इसने। जितना लिबास मुख्तसर होता जाएगा तरक्की याफ्ता होता चला जाएगा। सलावात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर, है ना। ये तरक्की का मियार बना। खड़े हो गए उलमा उसके खिलाफ, तलबा फांसियों के झूले उनके लिए लटका दिए गए। आयतुल्लाह फजलुल्लाह नूरी का फतवा गूंजा पूरे जगह, खबरदार मुकावमत करो, ये तुम्हारी नस्लों को खराब करने आए हैं, तुम्हारी नस्लों को खराब करने, तबाह करने। आज वहां पे कोई ऐसे मगरबियत का प्रचार हो सकता है? नहीं ना, तो तरक्की याफ्ता कहाँ है ना, उन्हें तो कुछ भी नहीं, उनके पास कुछ है ही नहीं। दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों के मुकाबले में खड़े हैं, अपना दिफा खुद बनाया है, अपना सैटेलाइट खुद बनाया है, अपने कारखाने खुद लगाएं, ऐसे हथियार बनाएं कि वो खुद परेशान है कि इनका तोड़ हमारे पास नहीं है। तो कैसे बना लिया? वो तो मगरबी नहीं है, वहां तो मगरबी आजादी नहीं है। समझ भी नहीं आती बात। खड़े हो गए फजलुल्लाह नूरी का, ये तरक्की नहीं है, ये बेहयाई है। बेहयाई अलग होती है, तरक्की अलग होती है। ये बेगैरती है, तरक्की नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात को? काश पैगाम पहुंच जाए जो मैं पहुंचाना चाह रहा हूं। होशियार रहो, ये घर घर में घुसाना चाहते हैं, वो घुसा दिया तकरीबन इन सारी बीमारियों को। गैरत पहले मरहले में, इनकी गैरत खत्म करो। पहले बच्चे माँ बाप के साथ, माँ बाप बच्चों के साथ बैठ के वो ब्लैक एंड व्हाइट काला पीला टीवी भी नहीं देखते थे, है ना। नहीं, बच्चे बैठे हैं साथ, कोई इश्तिहार आ जाएगा, ऐसा वैसा नहीं देखो। अब आहिस्ता आहिस्ता इनकी गैरत ख़त्म करो। कितने चैनल से बचोगे भाई? अब तो खबरों के बीच में भी आइटम है, आदमी खबरें बैठ देख रहे हैं। पहले तो खबरें देख लेता था ना 9 बजे वाली पीटीवी, अब तो खबरों के बीच में भी आइटम चल रहे हैं। कहाँ तक? तो पहले गैरत खत्म, फिर आदमी तो छोड़ो अब चल रहा है चलने दो, अब तो हर जगह चल रहा है ना। पहले इनकी गैरत खत्म कर दो, इनकी हया खत्म कर दो। ये बेगैरती फैलाई जा रही, इसके खिलाफ पूरा जिहाद आयतुल्लाह फजलुल्लाह नूरी का इसके खिलाफ था। इसके खिलाफ कर कयाम किया, अपने तलबा को, उलमा को, सबको हुक्म दिया पूरे ईरान सब इसके खिलाफ मुकायम। और फिर कत्ले आम शुरू हुआ उलमा का, तलबा का। यानी सिर्फ शाह रजा ने नहीं किया, मोहम्मद अली शाह के जमाने से चल रहा था। लेकिन देखा कि नहीं, जब तक फजलुल्लाह नूरी जिंदा है कुछ नहीं होता। तो मैदान तोपखाना, जिसको अब मैदान इमाम खुमैनी कहते हैं, ठीक है ना। मैदान पहले बता चुका हूँ, स्क्वायर जैसे माना रीगल स्क्वायर, तो इमाम खुमैनी स्क्वायर, तो फारसी में मैदान कहते हैं। तो मैदान इमाम खुमैनी जो है, ये पहले था मैदान तोपखाना, मैंने पुराना वाला देखा है 40-45 साल पहले, वही उस वक्त था 1909 या 10 में जब इनको फांसी दी गई है। पूरे शहर में ऐलान। अच्छा, जितने मगरिब ज़्यादा थे वो तो आ गए ना, माशाल्लाह जानते हैं अब, लिबरल सेकुलर हैं, कैसे कैसे नारे लगाए थे याद है ना। ये पाकिस्तान में हुआ था, कहीं और नहीं हुआ था, यहाँ हुआ था। तो वो सारे निकल आए, उनको हुक्म दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट का वो था। ऐसे उस जमाने में देखिए, याद रखिए कि चार ताकतों के जेर असर आ गया था। मोहम्मद अली शाह काचार ने बेच दिया था ना, बज़ाहिर वो बादशाह हैं लेकिन उनका हुक्म नहीं चलता था। हुक्म पर्दे के पीछे से दूसरे देते थे। ये थे कठपुतली। क्या थे? कठपुतली। ईरानी बादशाह की बात कर रहा हूँ, कहीं और दिमाग ना ले जाइएगा, इतना जोर मत डालिएगा अपने जहन पे आप। सर में दर्द हो जाएगा। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। समझ में आ गई बात? कठपुतलियां नाच रही हैं, तमाशा हो रहा है कठपुतलियों का। बर्तानिया, जर्मनी, फ्रांस, रूस, उस वक्त तक अमेरिका इतना पावरफुल नहीं हुआ था कि वहां पर आ जाता। ये चार ताकत है, इन चारों ने बंदर बांट की हुई थी। शुमाली इलाका किसके हाथ में था? रूस के हाथ में था। सेंट्रल ब्रिटिश के हाथ में था। जनूबी इलाके में किसका कंट्रोल था? बर्तानिया, उसका फ्रांस का। फ्रांस ने उन जगहों के ऊपर कब्जा किया। बंदर बांट की हुई थी इन्होंने, सबने आपस में इलाके बांटे थे, तुम्हारा ये हमारा, ये तुम्हारा ये हमारा। सेंट्रल में बजाहिर बादशाह फांसी दे रहा है, लेकिन बर्तानिया के हुक्म था कि छोड़ा नहीं जाएगा। जैसे हमारे यहाँ होता है ना, तुम्हारा कैदी देना नहीं, अपना कैदी छोड़ना नहीं। जज साहब को नींद खराब करके सुबह 6 बजे आना पड़ा रेमंड डेविस को छोड़ने के लिए। कितने बजे सुबह? अदालत कहाँ लगानी पड़ी थी? जेल में। जेल में ना, कितना अच्छा इंसाफ है। घर पहुँच के, जेल में पहुँच के इंसाफ दिया गया था उसको, उस मलून को जो कातिल था हमारे लोगों का। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। आज़ादी तो बस जनाब, इनको फांसी पे जब चढ़ाया जा रहा था तो हुक्म दिया गया, पूरा शहर जमा हो गया और बेटा मलून आगे आगे। अब लोग कहेंगे, अब यही तो कहते हैं ना, किसी के आलिम के घर में कोई ख़राब निकले देगा, अपने घर को तो ठीक नहीं कर सकते। ये ना कहा करो। जनाब नूह पैगंबर थे। क्या थे? नूह पैगंबर थे। और बेटा और जौजा? जनाब लूत पैगंबर थे। और जौजा? थोड़ी होता है, अपनी जिम्मेदारी अदा करता है इंसान, जिम्मेदारी अदा करता है, उसके बाद जो खराब निकलता है निकले। नबी का भी बेटा हो तो नबी थोड़ी जिम्मेदार, नबी जिम्मेदार है। कुरान कहता है नहीं, आप थोड़ी जिम्मेदार है, आपने तालीम दी नहीं ली, इसने किसी ने अच्छी तालीम ली किसी ने नहीं ली। तो इनका बेटा ऐसा मलून कि उस मजमे में खड़ा हुआ है, वो मगरिब ज़दा लोग जो नए नए आज़ादी मिली थी ना, सारे आ गए थे, उन्होंने पूरा घेरा डाला हुआ था शहर में, कर्फ्यू इनके लिए आज़ाद, उनके लिए कर्फ्यू, मोमिनीन के लिए सारे आज़ाद, मादर पिदर आज़ाद जितने थे सब जमा हो गए, तालियां बजा रहे थे जब उनको फांसी पे लटकाया जा रहा था। गौर से देख रहे थे, बेटे पे नज़र पड़ी, तारीख में जुमले के बड़ी गैज़ और गज़ब वाली नज़रों से देखा इसको, अपने बेटे को, बेटा तालियां बजा रहा है, और लोग कह रहे देखो ये बेटा भी तो खड़ा है, ये कितना अच्छा आदमी। और बाप को देखो, मौलवी को फांसी चढ़ गया। एक और तारुफ करा दो, आयतुल्ला फजलुल्ला नूरी का, नूरुद्दीन कियानूरी, पुराने लोग जानते होंगे, जिनका थोड़ा भी पॉलिटिक्स से थोड़ी सी रगबत रही होगी वो जानते हैं। नूरुद्दीन कियानूरी तोदा पार्टी का सेक्रेटरी जनरल, ईरान की कम्युनिस्ट पार्टी, दुनिया की बड़ी पार्टियों में से एक। तोदा कहते हैं अवाम, अवामी, तोदाई यानी अवामी, अवामी पार्टी, और वैसे पीपुल्स कह लीजिए आप, जैसे चाइना में ना पीपुल्स आर्मी, तो इस तरह वो तोदा फारसी में कहते हैं तोदा, तोदा पार्टी, हिजब तोदा यानी तोदा पार्टी। ये हिजब तोदा का सेक्रेटरी जनरल पोता, किसका पोता है? आयतुल्ला फजलुल्ला नूरी का पोता, और कम्युनिस्ट पार्टी का सेक्रेटरी जनरल मरते दम तक जेल में रहा, इनकलाब आने के बाद भी जिंदा रहा। इसके और साथी सीधे हो गए, आ गए थे ईमान की राह पे, लेकिन ये इतना जिद्दी था नहीं आया, इसको फांसी भी नहीं दी उन्होंने, क्योंकि इसका कोई ऐसा जुर्म नहीं था, कोई कत्ल डाका इस तरह का कोई जुर्म नहीं था। ले वहां जिंदान में रहा और वहीं पर यह, और बूढ़ा भी था तो मर गया। ये किसका पोता? आयतुल्ला फजलुल्ला नूरी का, जो फांसी जिसने कबूल की, साम्राज्य के सामने सरेंडर नहीं किया, क्योंकि उनके लिए इतना काफ़ी होता है कि हम हक पर हैं, बस हक है ना, मेयार क्या है? हक पे होना। ख़त्म किया आपके जहमतों को, मेयार होता है हक। करबला में अली अकबर ने मेयार दिया था ना, जोहर के हंगाम जब आए थे, देखा था कि लाशें उठा उठा के मेरा बाबा ला रहा है, तो आए थे, बाबा हम हक पर हैं ना, देख रहे ना, कोई यारो यावर नहीं, कोई नासिरो मददगार नहीं, कोई मुनीसो यावर नहीं, कोई नहीं, मेरा बाबा तन्हा होता जा रहा है, ये चंद लोग बचे 8-10। आने के बाद बाबा हम हक पर हैं ना, हुसैन ने गले से लगाया, दुआएं, हाँ मेरे लाल, हाँ मेरे बेटे अली अकबर, अल्लाह जानता है, अल्लाह गवाह है, अल्लाह का रसूल गवाह है, हम हक पर हैं, हम हक पर हैं। अली अकबर कहते हैं फिर क्या परवाह, सारी दुनिया मुखालिफ हो जाए, हम हक पर हैं तो फिर काहे की परवाह। بس ہمیشہ پہلے یہ سوچا کرو حق پر ہو کہ نہیں ہو، بعد میں مجمع دیکھا کرو مجمع ہے کہ نہیں ہے، مجمع کا کیا ہے، آج ادھر ہے کل ادھر ہے، ابھی کھڑا ہوگا ابھی بھاگ جائے گا، خود طے کرو کہ تم حق پر ہو، ڈٹ جاؤ حق پر، اکیلے کھڑے رہو، حق کے راستے میں تنہائی کی اپنی ایک لذت ہے، ایک لذت ہے اس کو وہی محسوس کرتا ہے جس کو یہ معلوم ہے کہ میں حق پر ہوں بے شک اکیلا ہوں، اس لذت کو ابو ذر سمجھتا ہے یا ابو ذر کے فالوور ابو ذر کے پیروکار اس لذت کو جانتے ہیں کہ اس میں کتنی لذت ہے، ہٹو مت، اپنے راستے کو مت چھوڑو، دنیا کہیں کہ کہیں چلی جائے، زمانہ کسی طرف چلے، ہٹو مت، یہ علی اکبر نے بتایا ایسا ہے، بس عزیزو آج آٹھویں مجلس ہے نا، کل انشاءاللہ آخری، تو کل تو مجھے مصائب پڑھنے جناب سکینہ سلام اللہ علیہا اگر زندگی رہی، تو بس یہ آج کی مجلس شہزادہ علی اکبر کے نام، اور مجھ سے ہر سال کچھ لوگ کہتے بھی ہیں ان مجالس میں، کہتے ہیں کہ اعلیٰ صاحب ایک دن شہزادہ علی اکبر کی شہادت پڑھ دی جائے گا، تو بس آج وہ دن آ گیا، میں شہزادہ علی اکبر کی کچھ تفصیلی شہادت تو نہیں پڑھ پاؤں گا، کچھ حصہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، جب وہ جوان ہے کہ جب اسیروں کا قافلہ گزر رہا تھا کوفے کے بازار سے، ایک موڑ پہ کوفے کی خواتین جمع تھیں تماشا دیکھنے کے لیے، معلوم تھا نا کہ آ رہے ہیں باغیوں کے سر آ رہے ہیں، باغیوں کی خواتین آ رہی ہیں، یہی مشہور تھا نا، جب سر شاہ شہدا نمودار ہوئے ایک سر پہ نگاہ پڑی اور منہ پیٹ پیٹ کے رونے لگی کوفے کی، کہتی تھی کہ کاش اس جوان کے قتل ہونے سے پہلے اس کی ماں مر گئی، سمجھ گئے نا آپ، یہ علی اکبر کا سر ہے، علی اکبر کا شبیہ پیغمبر، علی اکبر کے چہرے پہ سر پہ کسی کی نگاہ تھوڑی ٹھہرتی تھی، سب حیرت سے کہتے اتنا حسین خوبصورت جوان، ترس نہیں آیا اس کا گلا کاٹنے والے کو، اسے مارنے والے کو، سمجھ میں آئی بات، یہ وہ علی اکبر ہے، تو بتائیے حسین کے لیے کیسا ہوگا، اور صبح عاشورہ سب سے پہلے حسین نے علی اکبر کو اجازت دی تھی، یاد رکھیے گا، علی اکبر آئے تھے پہلے، بابا میں میدان میں جاؤں، علی حسین نے کہا جاؤ بالکل پہلے اپنے بیٹے کو، لیکن مسئلہ کیا ہوا، مسئلہ یہ ہو کہ انصار حسینی نے صفیں باندھ لی، مولا یہ کیسے ہوگا، علی اکبر چلا جائے کیا منہ دکھائیں گے آپ کے نانا کو جب تک ہم زندہ، انصار نے نہیں جانے دیا، پھر اولاد جعفر و عقیل نے نہیں جانے دیا، پھر کبھی علی کے بیٹے، کبھی حسن کے بیٹے، کبھی عباس کے دوسرے بیٹے، کسی نے علی اکبر کو جانے نہیں دیا، پھر ایک وقت وہ آیا کہ پھر علی اکبر آیا، بابا اب جاؤں، میرا دل کہتا ہے حسین نے حسرت سے کبھی دائیں طرف دیکھا، کبھی بائیں طرف دیکھا، چاروں طرف نگاہ ڈالی، شاید کوئی آگے بڑھ کے کہہ دے ابھی علی اکبر نہیں جائے، ابھی علی اکبر نہیں جائے گا، لیکن کوئی روکنے والا نہ تھا، ابھی کیسے روکے گا حسین علی اکبر کو، سب کے لاشیں تو خود اٹھا کر لایا، حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا اپنے جوان کو، ابھی کہا اچھا میرے لال میری طرف سے تو اجازت ہے، لیکن ایک بار اپنی ماں سے رخصت ہو لے، ماں سے اجازت لے لے، علی اکبر ماں کے خیمے میں آئے، اور آنے کے بعد فرماتے ہیں مادر گرامی ہیں آپ نے رات کو حکم دیا تھا، اب اس حکم کی بجاوری کا وقت آ گیا، میدان میں جا رہا ہوں، آپ کی اجازت درکار ہے، آخری سلام کے لیے آیا ہوں، ماں نے اپنے کڑیل جوان کو دیکھا، بڑے اطمینان سے کہا میرے لال میں کون ہوں اجازت دینے والی، جس پھوپھی نے پال کر جوان کیا ہے نا اس سے اجازت لے، آپ جانتے ہیں کہ اس باب میں ہمیشہ جو اصل روایت ہے، میں اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہوں، مصائب کے باب میں جہاں تک اجازت ہے بس وہاں تک جا کے، تو اب آئے پھوپھی کے خیمے میں سلام کیا، زینب نے جواب دیا مگر رخ پھیر لیا، پھوپھی اماں کوئی خطا ہو گئی ہم سے، آپ نے رخ پھیر لیا، کہ نہیں میرے لال خطا نہیں ہوئی، لیکن میں جانتی ہوں کہ آج تو کس ارادے سے آیا، علی اکبر دیکھ تیری جوانی بچانے کے لیے میں نے اپنے اون و محمد کو قربان کر دیا، تجھے میدان میں جانے کی اجازت نہیں دوں گی، علی اکبر فرماتے ہیں خوبی اماں آپ کی اجازت کے بغیر میں نہیں جاؤں گا، اطمینان رکھیے، بس یہ بتا دیجئے آپ کا مرتبہ بلند ہے یا میری دادی زہرا کا، ثانیہ زہرا گھبرا کے فرماتی ہے میرے لال یہ تو نے کیسا سوال کر دیا، کہاں وہ خاتون محشر، کہاں وہ سید نساء عالمین، اور کہاں میں ادنا سی کنیز، اچھا پھر بتائیے اگر قیامت کے دن میری دادی زہرا نے آپ سے پوچھ لیا زینب اپنے علی اکبر کو بچا لیا میرا حسین قتل ہو گیا، پیار آ گیا زینب کو اپنے بیٹے علی اکبر پہ، گلے میں باہیں ڈالی، پیشانی کے بوسے لینا شروع کی، میرے لال اب زینب تجھے نہیں روکے گی، اب نہیں روکوں گی بیٹا جا، اب چلا جا میں۔ لیکن اس کے باوجود مقاتل میں لکھا ہے کہ خیمے کا دروازہ بار بار اٹھتا تھا، بار بار خیمے کا پردہ بار بار اٹھتا تھا، بار بار گر جاتا تھا، کیوں؟ علی اکبر نکلنے کی کوشش کرتے تھے، بیویاں واپس کھینچ لیتے، کبھی ماں میرے لال ایک بار اور اس رخ انور کی زیارت کرا دے، کبھی پھوپھی علی اکبر ایک بار اور صدقے ہو جانے دے، کبھی کوئی بچی قدموں سے لپٹ جاتی تھی، بھیا نہ جاؤ، جو میدان میں گیا پھر واپس نہیں آیا، بڑی مشکل سے علی اکبر رخصت ہوئے، حسین باغ تھامے کھڑے ہیں، جاؤ میرے لال علی اکبر ہم بھی تھوڑی دیر میں تمہارے پیچھے آ رہے ہیں، جاؤ۔ علی اکبر سوار ہوئے، روانہ ہوئے، کچھ دور چلے تھے احساس ہوا کہ پیچھے پیچھے کوئی آ رہا، اب جو مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھا، بوڑھا باپ دونوں ہاتھوں سے کمر تھامے پیچھے پیچھے چلا، علی اکبر اتر آئے، بابا اگر اس طرح میرے پیچھے پیچھے آئیں گے میں کیسے جنگ کروں، حسین نے گلے سے لگایا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، میرا مولا فرماتا ہے علی اکبر تیرا کوئی تجھ جیسا بیٹا ہوتا تو اس طرح تیروں تلواروں کے زخم کھانے جا رہا ہوتا تو تو میری کیفیت کو سمجھ سکتا تھا میرے لال، لیکن جہاں تک ہو سکے مڑ مڑ کر اپنے بابا کو دیکھتا جا۔ علی اکبر گئے میدان میں اور سنیے منظر کیا ہے، حسین کی حالت یہ ہے کہ میدان میں کبھی اس طرف دوڑتے ہیں کبھی اس طرف دوڑتے ہیں، کیوں کیوں؟ ارے علی اکبر حملہ کرتے ہوئے کبھی دائیں طرف جاتا ہے کبھی بائیں طرف، جس طرف علی اکبر جاتا تھا اسی سمت میں حسین دوڑتے تھے تاکہ میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے رہے، میرا بیٹا میری نظروں کے سامنے رہے۔ حضرت آران حسین بس ایک وہ وقت آیا کہ جب حسین کو علی اکبر نظر نہیں آئے، یہ وہ وقت ہے جب حسین کا چاند شام کی سیاہ بدلیوں میں چھپ گیا، حسین نے آوازیں دینا شروع کی، علی اکبر علی اکبر میرے لال کہاں ہے کہاں ہے، علی اکبر کے کانوں میں آواز تو جا رہی ہے مگر علی اکبر کیسے بتائے، بابا تیرے علی اکبر کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی، خود گر گیا، سپر گر گئی، اتنے زخم علی اکبر کو لگے کہ زخموں سے چور ہو کے علی اکبر گھوڑے کی پشت پہ گر پڑے اور اپنے دونوں ہاتھ گھوڑے کے گلے میں ڈال دی، اپنی باہیں گھوڑے کے گلے گردن میں ڈال دی۔ سنان ابن انس ملعون آگے بڑھا، پوری برچھی علی اکبر کے کلیجے میں اتار، بس اس برچھی کا لگنا تھا علی اکبر گھوڑے پہ ٹھہر نہ سکے، گرنے لگے، علی اکبر گرنے لگے اور اس ملعون نے اپنی برچھی کو کھینچا، بس اس درمیان کیا ہوا کہ برچھی کا پھل ٹوٹ کے علی اکبر کے کلیجے میں رہ گئے، بس جب علی اکبر نیچے گرے تو گرتے گرتے آواز دی، یا بتا ہو علیک منی السلام، اے بابا علی اکبر کا آخری سلام، آواز حسین کے کانوں سے ٹکرائی، حسین کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، چلا کر کہا یا بنیا علی الدنیا بعدک العفا، اے میرے لال علی اکبر تیرے بعد اس زندگانی پر خاک ہو، بس حسین جلتی ریت پر گر پڑے، کھڑے ہوئے دو چار قدم چلے پھر گر پڑے، جب سنبھلا نہ گیا جب چلا نہ گیا تو زہرا کے لال نے اس جلتی ریت پر زانوؤں کے بل کوہنیوں کے بل اپنے کو گھسیٹنا اپنے وجود کو کھینچنا شروع کیا، آواز دیتے جاتے علی اکبر میرے لال کس طرف ہے، تیری آواز نے میری بینائی چھین لی، مجھے کچھ نظر نہیں آتا، آواز دے کہ بوڑھا باپ تیرے سرحانے پہنچے، نہ جانے کیسے ٹھوکریں کھاتے ہوئے حسین علی اکبر کے سرحانے آئے، سر اٹھا کے زانو پہ رکھا، دیکھا ابھی کچھ رمق جاں باقی ہے، رخساروں پہ رخسار رکھ کے پوچھا، بیٹا آنکھیں کھول، دیکھ بابا آیا ہے، دیکھ حسین آیا ہے۔ علی اکبر نے آنکھیں کھولی، بابا کو سلام کیا، حسین نے جواب دے کر کہا میرے لال کس حال میں ہے، کس حال میں ہے؟ علی اکبر نے کراہتے ہوئے کہا بابا نیزے کی انی ٹوٹ کے کلیجے میں رہ گئی ہے، بہت اذیت ہے، بہت تکلیف میں ہوں۔ اچھا میرے لال یہ امتحان بھی لے گا، حسین یہ امتحان بھی دے گا۔ علی اکبر کو جلتی ریت پر لٹا دیا، ایک ہاتھ علی اکبر کے سینے پر، دونوں گھٹنے ریت میں زمین پہ، دوسرا ہاتھ کلیجے میں برچھی کا پھل کھینچنے کے لیے۔ مجھے یقین ہے نانا بھی آ گیا ہوگا، بابا بھی آ گیا ہوگا، بھائی بھی آ گیا ہوگا۔ ارے ماں تو مدینے سے ساتھ ساتھ آ رہی ہے نا، کوئی بعید نہیں۔ حسین نے بابا کو دیکھ کر کہا بابا اب بتاؤ خیبر کا در اکھاڑنا مشکل ہے یا علی اکبر کے کلیجے سے برچھی کا پھل کھینچنا؟ اللہ اکبر کہا، برچی کے پھل کو نکالا، پھل نکلا، کلیجہ ساتھ آ گیا، کلیجہ نکلا، علی اکبر کا دم نکل گیا۔ ساری طاقت جمع کی، علی اکبر کے لاشے کو اٹھا لیا، اٹھا تو لیا مگر حسین سے چلا نہ گیا، واپس رکھا لاشا، گنجے شہیدہ کا رخ کر کے آواز دی میرے شیرو مجھ سے علی اکبر کا لاشا نہیں اٹھتا، کوئی بعید نہیں۔ لاشے تڑپتے ہو، آوازیں آتی ہو مولا پھر زندگی دلوا دے، پھر تجھ پہ قربان کر دیں گے۔ پھر رخ کیا خیموں کا، خیموں کا رخ کر کے آواز دی اطفال بنی ہاشم آؤ میری مدد کرو، مجھ سے علی اکبر کا لاشا نہیں اٹھتا۔ خیموں کے پردے اٹھنا شروع ہوئے، چھوٹے چھوٹے بچے دوڑے، واہ حسینہ واہ حسینہ کی صداؤں سے، حسین بچوں کی مدد سے علی اکبر کا لاشا خیمہ گاہ میں لے کر آئے۔ بیویوں نے حلقہ کیا، ماتم شروع کیا، زینب نے چاروں طرف نگاہیں کی، دیکھا ام لیلہ نظر نہیں آئی، فضا سے کہا فضا جا جا علی اکبر کی ماں کو تو لے کر آ، سنو عزاداروں اب جو فضا گئی ام لیلہ کے خیمے میں تو کیا منظر تھا؟ ام لیلہ کبھی خیمے کے ستون سے ٹکراتی ہے، کبھی اس ستون سے ٹکراتی ہے، آوازیں دیتی جاتی ہے لوگو مجھے خیمے کا دروازہ نظر نہیں آتا، ارے مجھے راستہ سجھاؤ، مجھے اپنے علی اکبر کے لاشے پر Ha 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 ha!